कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड के कार्यक्रम आज सवेरे के साथ। जिस तरह आप सुबह सैर पर निकलते हैं ताकि आपकी हेल्थ में इजाफा हो, आप तरोताजा महसूस करें, उसी तरह हम आज सवेरे प्रोग्राम में आपको देश दुनिया की सैर पर लेकर चलते हैं ताकि आपकी जानकारी में इजाफा हो और आप ताजा खबरों के साथ दिन भर के लिए तैयार हो जाएं। इसी मकसद के साथ मैं और मेरी साथी सायरा आप पहुंचे हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग सायरा।
Good morning, Sir Firozi, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us on this very, very fresh Monday episode of Aaj Savere. And while some of you would be looking forward and pepped up towards the week, some of you would be suffering from Monday blues like us. But nonetheless, I think that our news magazine Aaj Savere would help you give that perfect start to the day. जैसे कि Sir Firozi ने कहा कि ताज़ा तरीन खबरें जो कि आपका पूरा दिन
बना दे।
सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
जी सायरा, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बताया। श्री मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाऊ कॉलेजियम में देर रात कार्यक्रम में भारतीय समुदाय की विशाल सभा को संबोधित किया। भारत अमरीका द्विपक्षीय संबंध में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई अमरीकी इंडियन भावना का भी प्रतिनिधित्व करती है। श्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है।
Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Kuwait's Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah in New York in the wee hours today on the sidelines of UNGA. The leaders reviewed bilateral relations and discussed ways to further strengthen the historical linkages and strong people-to-people contacts. Prime Minister Modi also held talks with his Nepal counterpart KP Sharma Oli. The two leaders discussed matters of mutual interest to strengthen cooperation in all areas of age-old, multifaceted and expanding India-Nepal partnership. Prime Minister Modi also discussed emerging technology collaboration with business leaders at the CEO's roundtable. Mr. Modi met Dr. Krishna Singh of Haltech International and discussed Haltech's plan to expand manufacturing in India and the potential for boosting cooperation in the field of atomic energy.
प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अमेरिका में बोस्टन और लॉस एंजलिस में दो नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। उन्होंने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लूर चेयर शुरू करने की भी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि विविधता को समझना, उसे जीना और दैनिक जीवन में शामिल करना ही भारतीय संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पुष्प मंत्र भी दिया।
Campaigning for the second phase of assembly elections in Jammu and Kashmir will end today. 26 assembly constituencies spread over 5 districts will go to polls in this phase on the 25th of this month. These districts are Riyasi, Rajouri and Poonch in Jammu region and Srinagar and Budgam in the Kashmir Valley. Jammu and Kashmir assembly elections are being conducted in 3 phases. Counting of votes will take place on October 8th.
और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम आज से रांची के 2 दिन के दौरे पर रहेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व वाली टीम में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हैं। ये टीम रांची में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। इन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित 6 राष्ट्रीय और 3 क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन शामिल है। बाद में निर्वाचन आयोग की टीम मुख्य चुनाव अधिकारी, राज्य नोडल पुलिस अधिकारी और केंद्रीय बलों के समन्वयक से मिलेगी। गोवा के नौसेना युद्ध कॉलेज में आज 5वीं नौवहन संगोष्ठी होगी। इसे भारतीय नौसेना आयोजित कर रही है। ये संगोष्ठी हिंद महासागर क्षेत्र के प्रमुख देशों और भारत के बीच आपसी समझ, विचार विमर्श और सहयोग बढ़ाने का मंच है। संगोष्ठी में अवैध और अनियमित मछली पालन और अन्य अवैध गतिविधियों जैसे खतरों पर भी चर्चा होगी। दो दिन की संगोष्ठी में हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों की नौसेना के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें बांग्लादेश, कोमारोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।
Indian Railways, in coordination with IRCTC and Uttarakhand Tourism Development Board, will operate the Bharat Gaurav train for devotees wishing to visit Kedarnath, Badrinath and other pilgrimage centres. The Badri Kedar Karthik Swami Yatra by Bharat Gaurav Manaskhand Express is a 10-night, 11-day tour package covering places like Rishikesh, Rudraprayag, Guptkashi, Kedarnath, Karthik Swami Temple, Jyotirmath and Badrinath. The Badri Kedar Karthik Swami Yatra will commence with departure from CSMT on the 3rd of October at 2 PM and will conclude with the arrival at CSMT on 13th October at 11 AM. Passengers can board or deboard at Kalyan, Pune, Dond, Manmad, Musawal, Khandwa, Itarsi, Bhopal, Veena, Virangana, Lakshmibai Jhansi, Gwalior, Agra Cant, Hazrat Nizamuddin and Haridwar. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Anuradhisa Naike on his victory in the Sri Lankan presidential elections. In his message, Mr. Modi said, Sri Lanka holds a special place in India's neighbourhood first policy and Vision Sagar. He said he is looking forward to working closely with Mr. Narendra Naike to further strengthen the multifaceted cooperation for the benefit of the people and the entire region. And moving on to sports, the Board of Control for Cricket in India, BCCI Men's Selection Committee, has announced the Indian squad for the second test against Bangladesh. The selection committee has confirmed that the squad remains unchanged for the second test. The match will be held in Kanpur starting from the 27th of this month. India crushed Bangladesh by a huge margin of 280 runs on the fourth day of the opening test to take a 1-0 lead in the two-match series. The Indian squad for the second test includes skipper Rohit Sharma along with Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Virat Kohli, KL Rahul, Sarfaraz Khan, Rishabh Pant, Dhruv Jurel, R. Ashwin, Ravindra Jadeja, Akshar Patel, Kuldeep Yadav, Mohammad Siraj, Akash Deep, Jasprit Bumrah and Yash Dayal.
और सायरा, कल का दिन शतरंज के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत खास रहा। हमारे भारत की पुरुष और महिला टीम ने हंगरी के बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड में ऐतिहासिक 2 स्वर्ण पदक जीते, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने देश के खेल जगत में नया इतिहास रचा है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि इससे अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। और अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से। सायरा, क्या जानकारी है आपके पास इन सिटीज से?
वेल सर फिरोजी, लेट्स स्टार्ट विद शहर चेन्नई। स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर टीआरबी राजा हैज सेड दैट द गवर्नमेंट हैज प्लान्स टू बिल्ड अ स्पेस रिसर्च पार्क इन तमिलनाडु। Speaking at a college event in Chennai, he asked the students to be space ready and told that the government had secured deals with around 18 companies for the purpose. Emphasizing India's potential to move beyond service-oriented economy, he challenged students to create the next Google. The minister told that the state government's initiative will help the students through seed funding. Moving on to Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister and Irrigation Minister D.K. Shivakumar has assured that the new crest gates will be installed at the Tungabhadra Reservoir. He said that the downstream states of Andhra Pradesh, Telangana will be consulted along with Tungabhadra Port before the new crest gates are installed. He informed that the proposed new crest gates will use the latest technology. Enormous water was released from the dam due to the collapse of crest gate number 19 last month in the dam and later reinstalled. After which the dam is full now due to good monsoon downpour. Shivakumar also said that a detailed project report is ready to build the Navali Balancing Reservoir to utilize additional 33 TMC of water from Tungabhadra River, that is the state share. Moving on to Hyderabad in Telangana, Hyderabad Meteorological Centre has issued a yellow alert of intense spell of rain for about 11 districts of the state in the next 3 days, and the authorities are gearing for another spell of heavy rain. Several districts, including Hyderabad, are expected to experience downpours along with thunderstorms, lightning and squalls till the 25th of this month. Meanwhile, several areas in and around Hyderabad city received moderate rainfall of up to 58 millimetres last evening. Meanwhile, significant rainfall recorded in the state as the ongoing southwest monsoon has brought significant rainfall, and the state recorded an average of 919 millimetres of rainfall so far. It is a 31% increase over the normal 703.6 millimetres of rainfall. Hyderabad has also witnessed an above-average monsoon, recording 780.4 millimetres of rainfall, which is 36% deviation from its normal of 575.5 millimetres. So, well, Sarfirozi, this was the news that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji, Saira, hum jante hain ki desh mein is waqt chunavi mahol chal raha hai. Desh ke kai hisson mein chunav ya to matdan ho chuke hain ya hone wale hain. To hamari jo ye khabar hai Delhi se, ye bhi chunav se hi judi hai. Agami Haryana Vidhan Sabha chunav ke maddenazar Faridabad Zila Nirvachan Adhikari Vikram Singh ne zila ke sabhi printing press sanchalakon ko bina jaanch partal ke chunav pamphlet, poster aur sambandhit prachar samagri ki छपाई और प्रकाशन के लिए मना किया है. श्री सिंह ने कहा कि ऐसा न करना चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम होना चाहिए. नियमों के उल्लंघन पर दोषियों को 6 महीने की सजा से लेकर उनके प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है. स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण क्षेत्र में 45 से अधिक खाद्य संचालकों और रेस्टोरेंट प्रतिनिधियों के लिए कूड़े के बंटवारे और प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया. निगम ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकताओं को बढ़ाना था. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सहित पार्टी के मुख्य नेताओं ने कल नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर में एक जनसभा को संबोधित किया. अपने संबोधन में श्री केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नैतिक कारणों से दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है और उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी से काम किया. और अब बात करते हैं शहर मुंबई की. बृहन मुंबई नगर निगम ठाणे में येवई और काशेली को मुलुंड से जोड़ने वाली 21 किलोमीटर लंबी वाटर टनल बनाएगा. अधिकारियों के मुताबिक बीएमसी ने प्रस्तावित परियोजना के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया है. इसका निर्माण 1 महीने में शुरू होने की उम्मीद है. ये परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 4,500 करोड़ है. इसके अलावा बीएमसी कई प्रमुख अंडरग्राउंड वाटर टनल बनाने पर विचार कर रही है, जो मरोल और माहिम, मालाबार हिल और क्रॉस मैदान, वेरावली और यारी रोड सहित ही गुंडावली और भांडू कॉम्प्लेक्स जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी. केंद्रीय गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए 24 सितंबर से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे. भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि श्री शाह अपने दौरे के पहले दिन नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे. इसके बाद वे 25 सितंबर को नासिक और कोल्हापुर का दौरा करेंगे. बावनकुले ने कहा कि श्री शाह का मार्गदर्शन पार्टी को सक्रिय करेगा. भारतीय रेलवे भारत गौरव और अब खबर कोलकाता से. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार किसानों से सीधे धान खरीदेगी. ये कार्य विभिन्न सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा. खाद्य आपूर्ति विभाग के अलावा अधिकारी भी गांव का दौरा करेंगे. प्रदेश के प्रत्येक जिलों में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे. जिलों के दूरदराज स्थानों से धान खरीदी के लिए मोबाइल वैन का उपयोग किया जाएगा. इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रूपये से 117 रूपये बढ़ाकर 2,300 रूपये कर दिया गया है. धान से चावल बनाने के लिए चावल मिलों से टेंडर मांगे गए हैं. और अब आपको देंगे महानगरों के मौसम का हाल. शुरुआत करते हैं दिल्ली से. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात तक बारिश के साथ बिजली गरजने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और सायरा, आपके पास मौसम से जुड़ी क्या जानकारी है?
वेल सर फिरोजी, ऑल द थ्री सिटीज डाउन साउथ, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आर एक्सपेक्टेड टू हैव शावर्स टुडे इन सम पार्ट ऑफ द डे। इफ यू टॉक अबाउट चेन्नई, देन थंडरस्टॉर्म विद रेन इज एक्सपेक्टेड and the temperature will hover between 27 and 35 degrees Celsius, while Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain and temperature will hover between 20 and 28 degrees Celsius. In Hyderabad, the rainfall or thundershowers are expected towards evening or night and temperature in Hyderabad will hover between 20 and 31 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब समय है कि इतिहास की किताब में झांका जाए और आपको बताया जाए कि आज का दिन क्यों खास है। सायरा, दुनिया का हर इंसान एक समान है, कोई भी चीज उन्हें दूसरों से कमतर नहीं बनाती है, पर कुछ लोग हैं जो कुछ डिसेबिलिटीज के कारण दूसरों से थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे कि किसी को देखने में परेशानी हो सकती है या किसी को चलने में किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सायरा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को अलग थलग महसूस कराने या उनका मजाक बनाने की जगह उन्हें खुद में शामिल करने के तरीके ढूंढें। और आज एक खास दिन भी इसी मकसद से मनाया जा रहा है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है। ये दिन हियरिंग इम्पेयरमेंट लोगों की भाषा, सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। और सायरा, ये दिन लोगों को ये समझने में मदद करता है कि सांकेतिक भाषा यानी कि जो साइन लैंग्वेज है वो भी एक कम्युनिकेशन का मोड है और ये बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही एक अलग एक अनोखी लैंग्वेज है।
Yes, however, I would like to first say that there are two words in English. One is sympathy, one is empathy. So we should not sympathize but empathize with people who are physically challenged, because a lot of unlearning on us is also important. Jitna hamara farz nahi hai ki khali unko hum log mainstream lae, but hamara farz hai ki hum bhi jo hai unse empathize kare aur apne aap ko unki jagah rakhe kabhi dekhe, then we will be able to understand how life is so challenged, and especially little things like, people not building ramps while making buildings. Small things become big challenges for a lot of people.
और disability से जो disabled लोग होते हैं उन लोगों को washroom अक्सर use करने में बहुत problem होती है।
Yeah, so these are the things in which we need to be more sensitive towards them, right? So the International Day of Sign Language, it's a unique opportunity to support and protect the linguistic identity and cultural diversity of all the people who are physically challenged and are users of sign language. During 2024 celebrations, the world will once again highlight the unity generated by sign languages. World leaders and other government officials are invited to sign this year's theme, which is Sign Up for Sign Language Rights in the National Sign Language. And however, our country can proudly say that we were one of the first countries, that we were a young country. We had gained independence very late, you can say in 1947. Yet we were one of the first countries in the world who jinka ek media wing, Prasar Bharati hum log keh sakte hain, Doordarshan ne pehla weekly bulletin 1987 mein hi shuru kiya tha sign language, which still continues, and very few people do that. Not any private channel does that, but we should be proud of that at least we are sensitive towards our government is sensitive towards that.
और इन्हीं पद्मों से ही हम उन्हें खुद में, जैसा हमने कहा, कि शामिल कर सकते हैं.
Yes, absolutely. So yes, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities recognizes and promotes the use of sign language. It makes clear that sign languages are equal in status to spoken languages and obligates states parties to facilitate the learning of sign language and promote the linguistic identity of the community that is physically challenged. The UN General Assembly has proclaimed 23rd September as the International Day of Sign Languages in order to raise awareness of the importance of sign language in full realization of the human rights of people who are different from us.
जी, और अब इतिहास से जुड़ी कुछ और घटनाएं. आज ही के दिन 1739 में रूस और तुर्की के बीच बेलग्रेड शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए. 1857 में आज ही के दिन रूसी युद्धपोत लेफर्ट फिनलैंड की खाड़ी में आए भीषण तूफान में गायब हो गया और इस तूफान में 826 और लोग मारे गए. 1889 में रिचर्ड रोड्स ने सुनने में मदद करने वाली शुरूआती मशीन बनाई जिसे आडियोफोन का नाम दिया गया. 1955 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर किए और आज ही के दिन 1958 में ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया.
In 1974, the first NCC Air Force squadron of women was established at Vanasthali Vidyapeeth in Rajasthan. In 1983, the Supreme Court upheld the execution of criminals through hanging by rope. In 1992, Indian-designed pilot-less target aircraft called Lakshya was successfully tested. And in 1997, India won the Sahara Cup cricket series by a 4-1 victory over Pakistan.
और 2003 में आज ही के दिन भूटान में लोकतांत्रिक संविधान का मसौदा तैयार हुआ. 2004 में हैती में तूफान के बाद आई बाढ़ में कम से कम 1070 लोग मारे गए. 2009 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय उपग्रह ओशन सेट 2 समेत 7 उपग्रह कक्षा में स्थापित किए.
एंड नाउ इफ यू रिमेम्बर सम ऑफ द पर्सनालिटीज, सो इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम है
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनकी आज पुण्यतिथि है. ये प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे. इन्हें तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से माना जाता है. कविता के अलावा इन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा. इनकी रचनाओं का कई और भाषाओं में अनुवाद भी हुआ. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपे इनके लेख विशेष लोकप्रिय रहे. सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के सहायक संपादक के पद पर भी काम करा और इनके कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया. और सायरा, मैं उनकी इसी कविता की कुछ लाइन्स यहां कहना चाहूंगी. क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है, बिन अदालत और मुवक्किल के मुकदमा पेश है. आंख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़, आदमी भूगोल है, जी चाहा नक्शा पेश है.
And we are remembering another poet today, Sarif Rozi, on his birth anniversary. Yes, today is Ramdhari Singh Dinkar's birth anniversary, a Hindi poet, essayist, patriot and academic who is considered as one of the most important modern Hindi poets. He re-emerged as a poet of rebellion as a consequence of his nationalist poetry written in the days before the independence. His poetry exuded veer ras and he has been hailed as the Rashtrakavi on account of his inspiring patriotic compositions. He was a regular poet of Hindi Kavi Sammelans in those days and is hailed to be as popular and connected to poetry lovers for Hindi speakers as Pushkin for Russians.
और सायरा, कविता आदि के अलावा इन्होंने कई नाटक भी लिखे. इनका एक रेडियो प्ले अंतराल आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया. हम अपने श्रोताओं को अब वही सुनाएंगे.
तो कल शाम को तुम मिसेस खन्ना के यहाँ जाना चाहती हो?
मैं कब चाहती हूँ, लेकिन बच्चे मानते भी तो नहीं. सुबह से ही फिल्म की रट लगाते हैं. तुमसे कितनी बार कहा?
थोड़ा सब्र करो निशा, टीवी भी आ जाएगा.
कब तक सब्र करूँ? पास पड़ोस में सबके यहाँ टीवी है, फ्रिज है, फोन है, एक हमारा घर है जहाँ कुछ भी नहीं.
मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि नहीं लाऊंगा.
तनख्वाह के भरोसे तो ये सब होने से रहा, न पैसे बचेंगे न कुछ आएगा.
फिर कैसे करें?
आखिर गांव की जायदाद में तुम्हारा भी तो कुछ हिस्सा है. तुम्हारे भाई साहब अकेले उसका फायदा उठा रहे हैं. ये भी ना हुआ कि कभी 4-6 क्विंटल गेहूं चावल ही भेज देते.
वो देना भी चाहे तो उतनी दूर से लाएगा कौन?
सच तो ये है वो तुम्हें एक दाना भी नहीं देना चाहते.
और सायरा, आज एक बहुत ही मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्मदिन है. हम बात कर रहे हैं तनुजा की. इनकी जोड़ी अभिनेता संजीव कुमार, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ 60 और 70 के दशक में बेहद लोकप्रिय हुआ करती थी. तनुजा को हिंदी फिल्मों में मेम दीदी, चांद और सूरज, बहारें फिर भी आएंगी, ज्वेल थीफ, नई रोशनी, जीने की राह, हाथी मेरे साथी, अनुभव और दो चोर जैसी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है.
And if we talk about some of the noted awards, well, in 1964, Bengal Film Journalists Association Award for Best Supporting Actress for the film Benazir. And she also bagged the Filmfare Award for Best Supporting Actress for Paisa Ya Pyar. And in fact, very few people know that in 2013, she won the Best Actress Award for a Marathi film called Pitruru. And also, she received in 2014 the Filmfare Lifetime Achievement Award. So there's a very beautiful song that is filmed on her. Let's listen to it.
Raat akeli hai, bujh gaye diye.
Full number. And next on our list is Naam to suna hoga jinka naam hai Prem Chopra. Today is its birthday, and he made his debut in the Hindi film industry with Bharat Bhushan starrer Murmur Kena Dekh in 1960, which didn't do well. But in 1960 he got a Punjabi film, Chaudhary Karnail Singh, opposite established star Jabin Jaleel, and the film won a national award. And then Prem Chopra got noticed. He didn't have much hit Hindi films till 1964, with the exception of his debut Punjabi hit films. But his peak period in Hindi films as a villain has been from 1967 to 1991. And his he appeared as a villain in very few films, but he took up positive character roles from 1999 onwards and started getting more positive roles from 2005. Yet his dialogue, Mera Naam Hai Prem Chopra, from the film Bobby, was very, very popular.
1976 में प्रेम चोपड़ा को सहायक अभिनेता के तौर पर फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया. और आज ही बर्थडे है कुमार सानू का. ये हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गायक हैं. इन्होंने गायन की शुरुआत की 1989 में फिल्म जादूगर से. जुर्म फिल्म के जब कोई बात बिगड़ जाए से इन्हें पहली सफलता मिली, पर सायरा जिस फिल्म ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया गायकी के क्षेत्र में, वो थी फिल्म आशिकी. इसके बाद इन्हें लगातार 5 सालों तक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला. 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी मिल चुका है. आइए सुनते हैं उनके गाए कुछ मशहूर गीत.
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना. तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना. चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना. मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा. मेरी मोहब्बत में है कितना असर देखो ना. जिए तो जिए कैसे, है बिन आपके. लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके.
Today we are also wishing a happy birthday to Palash Sen, and all the kids of 90s would probably remember how popular Palash Sen and his songs were. Aur dhoom pichak dhoom ne to dhoom hi macha di.
Aur mera favorite raha kabhi aana meri gali.
Right, so each one of us have their own favorites from Palash Sen. Let's listen to this song. And quickly, let's also wish a happy birthday to Srijit Mukherjee, a film director and screenwriter who predominantly works in Bengali cinema. And his film Raj Kahini became an official selection at the 19th International Film Festival and has been remade into a Hindi film titled Begum Jaan. Let's listen to this song from Begum Jaan.
ये क्या हो गया कब सांस थामी कब सांस छोड़ी हर दर्द मेरा बयां हो
और श्रोताओं उम्मीद है कि आपका पूरा दिन इसी तरह इन नगमों को गुनगुनाते हुए निकले। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।